ये आकाशवाणी है, अब आप विनय सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का भी विस्तार किया। इससे हर आय वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स में सुविधा और सेवा का भी उद्घाटन किया, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ओडिशा के बरगढ़ में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। राजनीतिक दल आगामी चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी आज समाप्त हो गई। इस चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 62 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। पहले चरण के चुनाव में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों से तलाशी अभियान के दौरान 86,32,00,000 रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 20 FIR दर्ज की गई हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने वर्तमान भू राजनीति की जटिलताओं, इसकी चुनौतियों, संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। इस दौरान श्री जयशंकर ने आग्रह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों के मद्देनजर सेना ने जम्मू संभाग के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ के वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। आधुनिक हथियारों से लैस और निगरानी उपकरणों से लैस सेना सीमावर्ती इलाकों में तैनात है। पिछले 2 सप्ताह में 7 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में 2 सैनिकों सहित 13 लोगों की मृत्यु हुई है। सेना सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए ड्रोन और आधुनिक उपकरणों से पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रही है। राजस्थान के सीकर जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब यात्रियों से भरी एक निजी बस सालासर से नवलगढ़ जा रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख जताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनने की राह पर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है और इसकी नींव सरदार पटेल ने रखी थी। देशभर के विभिन्न राज्य भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 49 ओवर में 226 रन 9 विकेट पर बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।